देवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक नंबर 50। नो चेष्टा स्पृष्ट सलीला संध्याया मुक्तमर्धजा अनर्चिता संयत वाक् न असंबिता बहिर्चरे नो चेष्ट स्पृष्ट सलीला संध्यायां मुक्तमूर्ध्वजा अनर्चिता संयत वाक् न असंबित बहिर्चरेत् न उचेष्टा स्पृश्य सलीला संध्यायां मुक्तमूर्ध्वजा अनर्चिता संयत वाक् न असंवित बहिर्चरेत् नो चेष्टा स्पृश्य सलीला संध्यायां मुक्तमूर्ध्वजा अनर्चिता संयत वाक् न असंवित बहिर्चरेत्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ना नहीं उच्छेष्टा जूठा अस्पृष्टा सलीला बिना धोए संध्यायाम सायंकाल मुक्त मूर्धजा बाल खोले हुए अनर्चिता आभूषण रहित असंयत वाक् बाणी के संयम बिना न नहीं असंबिता बिना ओढ़े बहे बाहर चरे जावे। अनुवाद। तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा। कथा इस प्रकार की है। कश्यप जी अपनी पत्नी दीप्ति को पुंसवन व्रत की विधि विधान बता रहे हैं और उसी विधि के उपलक्ष्य में किस प्रकार की संयम बरतनी चाहिए शब्द को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नो उच्छिष्ट अस्पृष्ट सलीला, न किसी के द्वारा जूठा किया हुआ कोई वस्तु सेवन करनी है न अस्पृष्ट सलीला और न किसी न छूने वाले व्यक्ति के द्वारा छुए हुए वस्तु का उपयोग अपने लिए करना है। इसीलिए खास करके भगवान की सेवा के विषय में बताया जाता है कि बहुत ही सावधानी के साथ पुजारियों को भगवान के पूजा विधि या भोग विधि, किसी भी प्रकार की जो पूजा की विधियां हैं, उसको अति सावधानी के साथ वर्तनी चाहिए। बताया जाता है कि जिस गद्दे पर या जिस कुर्सी पर कोई आम व्यक्ति बैठते हैं, तो पूजा करने वाले उस कपड़े से पुजारी को उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए सेपरेट आसन होने चाहिए। आप सोचिए पुंसवन व्रत की विधि पालन के लिए यहां कश्यप जी कितनी विधि विधान बता रहे हैं दिति को, और इस इतने कठिन विधि विधान बताने के पीछे उनका एक ही कारण है। ठीक है, जनरल बात यह देखी जाती है कि किसी भी पति को अपने पत्नी से प्रेम होता है, तो उनके मन में यह भाव है कि अभी इसकी जो मन स्थिति है, इसको सुधारने के लिए, इसके मन में बदलाव आने के लिए उन्होंने इतना कठिन व्रत का नियम बताया उसे पालन करने के लिए कि अगर ठीक से पालन करेगी तो ये वैष्णवी बन जाएगी। प्रभुपाद जी इससे पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कश्यप जी का मन का भाव यही था कि वो चाहते थे कि मेरी पत्नी वैष्णवी बन जाए, क्योंकि जो बैर की भाव है, जो बदला लेने की भाव है इंद्र से, वह भाव मिट जाए। सच में देखा जाए तो यह संसारिक व्यवहारिक स्थितियां यही है कि बदले लेने की भावना से ही इतनी लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। एक नीतिकार ने एक श्लोक में लिखा है कि अगर किसी के अंदर बदले लेने की भावना अगर उसके हृदय से हट जाए तो उसके जीवन में कभी झगड़ा नहीं आएगा। लेकिन यहां संसारिक झगड़ा नहीं है, ध्यान देने की बात है कि इसको भागवत के अंदर सजा करके रखा गया है, तो यह नहीं कोई कह सकता है कि भागवत के अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। खास करके जिन श्लोकों को कश्यप जी दिति के लिए बोल रहे हैं कि ये नियम पालन करो, यह अगर देखा जाए तो साधुओं के पालन करने लायक नियम है। इस श्लोक के तीसरे चौथे श्लोक अगर पीछे हट करके देखें तो एक श्लोक में आया है कि अगर हम भक्ति के पथ पर अच्छे तरह से अगर विकास करना चाहते हैं तो किसी से विद्वेष करना, मतलब विशेष द्वेष करना तो छोड़ दें। क्योंकि जो बदले की भावना है यही मनुष्य को अपने मनुष्य स्तर से नीचे गिरा देती है, तो इसमें पहले शब्द में तो किस व्यक्ति का प्रसाद खाना चाहिए जूठा, और किस व्यक्ति के द्वारा छुए ये वस्तु को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इसके पीछे भी तथ्य छिपा हुआ है। क्योंकि अगर हम लोगों का खान पान, उठना बैठना, किसी से वार्तालाप करना अच्छे व्यक्ति की संगति में न हो तो निश्चित रूप से हमारे भक्ति पथ में बदलाव आ जाएगा। जो तथाकथित हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं इससे हम भटक जाएंगे। इसलिए यह सावधानियां भक्त को भी बरतने की जरूरत है। रूप गोस्वामी तो एक जगह लिखते हैं कि अगर हम लोग अपने खाने की स्थिति को और अपने संगति की स्थिति को अगर सही कर लें तो इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें भक्ति पथ से भटका दे। लेकिन यही दो चीज है, संगति, बुरी संगत, और हमारे जो खाने की स्थितियां बिगड़ी हुई हैं जिससे हम भटक जाते हैं। और यही बात इन शब्दों के पीछे छिपी हुई यही अर्थ है कि जो तेरे अंदर बदला लेने की भावना है वो सब बातें तब मिट जाएंगी, देश की भावना हट जाएगी, जब तू इस प्रकार की कठिन व्रत करोगे। अन्य जगह विद्वानों ने लिखा है कि अगर हम लोग व्रत करते हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, व्रत किस लिए किया जाता है? व्रत गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो एकादशी व्रत हम लोग करते हैं, चाहे जितने भी वैष्णव व्रत हैं हम लोग करते हैं, तो इसके पीछे यही कारण होता है कि हम अपने शारीरिक कष्ट, इसलिए हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं कि यह शरीर केवल गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इससे जितनी तपस्या हो पाए, इन तपस्या से, इस शरीर से किए द्वारा भक्ति से गुरु प्रसन्न हो। आगे शब्द है संध्यायाम मुक्त मूर्धजा। देहातों में हमने देखा है बड़े बूढ़े लोग संध्या करते हैं। संध्या करने का अर्थ है कि वो एक आसन पर बैठ करके कुछ पूजा जैसे आंखें बंद करके कुछ ध्यान करते हैं या कुछ अपने मुख से बोलते हैं, या वैष्णवों के लिए भी त्रिसंध्या वेला कहा गया है कि तीन बार जो हम लोग गायत्री करते हैं, वैष्णव लोग भी संध्या काल वंदना करते हैं। जो गायत्री करते हैं सायंकाल की, दोपहर में, सुबह की, यह भी संध्या वंदन है। इसलिए वैष्णवों के लिए, खास करके ब्राह्मणों के लिए, त्रिवेला संध्या वंदन करना पड़ता। इन श्लोकों के अंदर अलग ही, इस श्लोक के अंदर तो कुछ नहीं है लेकिन इन शब्दों के अंदर एक अलग अलग ही भाव छिपा हुआ है, क्योंकि पूर्ण रूप से कश्यप जी का जो मन स्थिति है, शुद्धता के साथ भक्ति में लगा हुआ है, तो उनकी मन स्थिति से यह शब्द निकले हुए हैं कि जो सुख की अनुभूति मैं करना चाह रहा हूं या मैं कर रहा हूं, वह सुख की अनुभूति इसको भी मिल जाए, प्रयास उनका यह है। क्योंकि जिस साधु के ऊपर जिस रंग का अन्वेषण होता है, जो रंग चढ़ा हुआ रहता है, वही रस वो किसी दूसरे को देना चाहता है। इस श्लोक के अंदर खास करके दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अनर्चिता, असंजत वाक। असंजत वाक का मतलब यह है कि हम ऐसी वाणी न बोलें कि जिससे किसी की मन स्थिति विचलित हो जाए। गीता हम लोग पढ़ते हैं तथा कथित हम लोग साधु भी कहे जाते हैं, लेकिन यही वाणी हम लोगों के बनी बनाई मन स्थिति को मिटा देती है। असंजत वाणी का अर्थ है कि शास्त्र से जो विलग स्थितियां उत्पन्न कर दे, किसी की मन स्थिति सही रास्ते पर है और उसको विचलित कर दे, तो उसको असंजित वाक कहते हैं। असंजित वाक का अर्थ ही है कि किसी की बनी बनाई मन स्थिति, जो उसका सही स्थिति है, भक्ति के पथ पर विकास करने की स्थिति है, लेकिन उसको एक शब्द में हम उसको विचलित कर देते हैं। अब ऐसा शब्द क्यों कश्यप जी बोल रहे हैं, तो विचारणीय विषय यह है, क्योंकि खुश तो कर लिया दीती अपने सेवा से कश्यप जी को, लेकिन मन में उसके भाव क्या पक रहा था कि एक ही वाक्य ने, एक ही शब्द ने कश्यप जी की मन स्थिति को विक्षेपित कर दी। जे ही दीती कहती है कि मुझे इंद्रहा, इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए, तो मन स्थिति उनकी विक्षेपित हो चुकी है। और व्यथित हृदय से अब उनसे द्वेषपूर्ण ये वाक्य नहीं बोल रहे हैं इन श्लोकों के अंदर। उनका कहने का भाव यह है कि अगर ये मेरी पत्नी है, अगर मुझसे ये कही ऐसी बात तो कोई गलत नहीं कही, क्योंकि स्वभाव का उन्होंने पीछे वर्णन किया, यह स्वाभाविक स्थितियां हर जीव की यही होती है, खास करके स्त्री स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया। तो यह केवल स्त्री शब्द से नहीं लेना है, यह दोनों पक्ष में चलता है। भक्ति दोनों, भक्ति के जो सिद्धांत हैं दोनों पक्ष पर लागू होता है। हम लोग किसी की मतलब खिंचाई होती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि नहीं नहीं चलो स्त्रियां ऐसे हैं वैसे वैसे हैं, लेकिन यह बात नहीं है। सिद्धांतता देखा जाए तो किसी भी जीव के अंदर यह प्रवृत्ति है स्वार्थ सिद्ध करने की। इसलिए विशेष करके असंजमित वाक्य का अर्थ है कि हम ऐसे बोलने से पहले एक बार विचार कर ले। मेरे गुरु महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि पहले सुनो, उसके बाद गुनो, उसके बाद धुनो। पहले सोचो कि हम अब जो बोल रहे हैं इस वाणी का प्रभाव क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर मुख से निकल भी गया तो विचार जरूर करो कि ओह, मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। और रिजल्ट, उसका रिजल्ट के ऊपर, परिणाम के ऊपर एक बार विचार करो तो पता चलता है कि नहीं, रियल में हमें ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। और आचार्य लोग ये बताते भी हैं कि मुनि शब्द की परिभाषा या साधु की भी परिभाषा यही बताते हैं कि ऐसे हमें बोलना है भगवान के भक्ति के अलावा, भगवत वाणी के अलावा, किसी भक्त की प्रशंसा के अलावा हम लोग अगर जो कुछ भी बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। मुनि शब्द की परिभाषा भी शास्त्रों में यही बताई गई है कि मुनि, मुनि शब्द से ही मौनी बना है। मुनि शब्द का अर्थ है कि संसारिक वार्तालाप अगर करनी हो तो बल्कि चुप रहे, मौनी बन जाए। मौनी का अर्थ ही है कम बोलना, चुप रहना। अगर भगवान के विषय में बोलना है तो जितनी शक्तियां हैं उतनी बोलते ही जाना चाहिए, यह परिभाषा है। यह नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं उस बात का, उस शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा। असंजत वाक नहीं हमें बोलनी चाहिए, या इसको बोलचाल की भाषा में असंगत वाक, कि जिससे हमारी संगति किसी से दोस्ती है टूट न जाए, ऐसा वाक्य नहीं बोलनी चाहिए। एक जगह एक श्लोक में बताया गया है, मतलब स्वर्ग से आए हुए व्यक्तियों का लक्षण बताया गया है और नरक से आए हुए व्यक्तियों का लक्षण बताया गया है। कि उनके लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कहां से आया है। स्वर्गाच्युतानां जधो न लोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, स्वर्ग से च्युत हुए ये व्यक्ति के शरीर में ये चार प्रकार के चिन्ह बताए जाते हैं। स्वर्गाच्युतानां जधो न लोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, चार चिन्ह या चार लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। मधुराच बाड़ी पहला, कि स्वर्ग से गिरे हुए व्यक्ति का यह लक्षण बताया जाता है कि वो पहले मीठा बोलता है, मधुरम च बाड़ी। उसके बाद सुरा और चराराम, देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। यह नहीं कि जहां बैठता है वहां देवताओं की निंदा करना शुरू कर देता है। शास्त्र में जो है वाक्य लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आदर भाव होनी चाहिए, किसी भी जीव के प्रति आदर भाव होनी चाहिए। पहला लक्षण बताया जा रहा है स्वर्ग से गिरे हुए व्यक्ति का, तो मीठा बोलता है। दूसरा बताते हैं कि सुराचराना, सूर का मतलब, सूर मतलब देवता, अर्चना मतलब देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा भाव होती है। मैं दूसरे एक शब्द इसे पहले छोड़ दिया कि स्वर्गाचितानाम जधो न लोके चत्वार चिन्हानि वसन्ति देहे, तो चार चिन्ह जो बसते हैं उसमें पहला है दानम प्रसंगानाम। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के अंदर पहला लक्षण पाया जाता है कि वो दान देने में प्रवृत्ति रखता है, विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है। और दूसरा बताया गया है कि मधुरम च बाणी, वो मीठा बोलता है। आप सोचिए कि हमें कितना सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, केवल द्रौपदी के शब्द के बाण से ही महाभारत शुरू हुआ। अगर ऐसी तीखी वाक्य द्रौपदी अगर नहीं बोली होती दुर्योधन को कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, तो शायद महाभारत नहीं हुआ होता। और नीतिकार ने एक श्लोक के अंदर लिखा भी है कि कोई लाठी का मार या और किसी शस्त्र का प्रहार बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कोई बात का घाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम लोग ध्रुव प्रसंग में क्या पढ़ते हैं, ध्रुव प्रसंग में क्या पढ़ते हैं कि ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि ने क्या कहा कि तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो। बस केवल इतने ही शब्द से ध्रुव महाराज का हृदय जो था विदीर्ण हो चुका। कि मुझे अपने पिता के गोद में बैठने से मना किया जा रहा है, क्या मैं पुत्र पिता का प्यार पाने लायक नहीं हूं, मैं उस गोद का अधिकारी नहीं हूं। आगे जाते हैं, कितने नारद जी कितने ढंग से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने गुरु के भी वाक्य को काटते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे देवर्षि आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपका उपदेश अभी मेरे हृदय में रुक नहीं रहा है, क्योंकि हमारा हृदय सौतेली मां के वाक्य रूपी बाण से छिंद हो गया है, छिद्र हो गया है हमारे हृदय में, इसलिए ये बात आपका उपदेश रुक नहीं पा रहा। आप सोच लीजिए कि वाणी की इतनी बड़ी मतलब प्रक्रिया होती है, इसलिए बोलने पर विचार करके बोलना चाहिए, दान में रुचि रखनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए। और चौथा है, चौथा यह है कि ब्राह्मणम तर्पणम च, ब्राह्मण के भी प्रति हमें श्रद्धा भाव होनी चाहिए। ब्राह्मण से अर्थ है कि यह नहीं कि घृणा की दृष्टि से देखना, ब्राह्मण का अर्थ है जो भगवत भक्ति परायण व्यक्ति हो उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। भागवत का 11 स्कंद अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक श्लोक में बताया गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, मैं खास करके कलयुग में मैं यज्ञ में घी और आहुति डालने से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कि मेरे भक्त के मुख में आहुति डाला जाए, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। मुख में आहुति डालने का अर्थ है कि अच्छा अच्छा व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा करके भगवान के भक्तों को खिलाया जाए, यह आहुति है। और इस आहुति से मैं खास करके कलयुग में ज्यादा प्रसन्न होता हूं। ब्राह्मण तर्पणम भाव से यह है कि साधु के प्रति तो विशेष रुचि होनी ही चाहिए, लेकिन किसी के भी प्रति विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। भले किसी व्यक्ति की हृदय में अलग प्रकार की भावना छिपी हुई हो, लेकिन हम अपने भाव को क्यों बिगाड़े, हमें अपने हृदय के भाव को बनाए रखने के लिए किसी के भी प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। एक नीति श्लोक में लिखा हुआ है कि अगर किसी को सुधारना हो, अगर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सामने गलत कर रहा है, तो अगर उसकी वास्तविक भलाई अगर हम करना चाहते हैं तो उससे समाज में ऐसे उसको बेइज्जती के दृष्टि से नहीं, उसको बदनाम करने के दृष्टि से नहीं, अलग ले जा करके अलग ढंग से उसको हम समझा सकते हैं। इसलिए वाणी की स्थिति पर बहुत ही हमें जोर दिया गया है शास्त्रों के अंदर। तीसरे स्कंद में भी साधु की परिभाषा भगवान कपिल देव जी मां देवती को बताया, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम साधवो साधु भूषणा, कि साधु का ये आभूषण है सहन करना, प्रेम से बोलना, और उसका हृदय में ऐसी वाक्य न प्रवेश करा देना कि जिससे उसकी बनी हुई स्थितियां बिगड़ जाए। अब ये तो हम लोग सुन लिए कि स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के ये चार चिन्ह उसके शरीर में होते हैं, कि दान देने में रुचि होती है, मधुर बोलता है, देवताओं का पूजक होता है, देवताओं का पूजक का मतलब है देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, और चौथा है कि ब्राह्मणों के प्रति भी वो सहानुभूति रखता है, मतलब भक्तों से अतिशय प्रेम करने का प्रयास करता है। इसके ठीक विपरीत नरक से आए हुए चार व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। अब हम लोग अपने को कहां हैं, हम किस स्थिति में हैं, या हम कहां से आए हैं, इसकी अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। नरकागतस्य नरकस्य नरस्य चिन्हम, नरक से आगत्य मतलब आगतस्य आए हुए व्यक्ति के चार चिन्ह बताए जाते हैं। वो भी है नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। पहला बताया गया है कि नरक से जो आया हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में देखा जाता है सरोगता, वह जीवन भर रोगी रहता है। एक दवाई खाता है दूसरा दवा शुरू हो जाता है, दूसरा दवा खाता है दूसरा रोग शुरू होता है बंद हो जाता है, तीसरा रोग शुरू हो जाता है। सरोगता, चाहे जिस स्थिति में मनुष्य हो अपने ऊपर एक कसौटी जरूर कसना चाहिए, पश्चाताप करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हे भगवान, इससे यह जाहिर होता है कि हमने कुछ गलत काम किया है, तो अब तो आपके शरण में आए हैं, कृपा करके मुझे बचाओ। सरोगता। दूसरा बताया गया है बंधु जनेशु वैरम, कि अपने संबंधियों से अपने कुटुंबियों से ही नित्य प्रतिदिन लड़ते रहता है, क्योंकि जिसको अपना मान करके जिसके लिए गधे की तरह परिश्रम करके संसार में वो लात बात सा करके कमाता है और उन्हीं से कभी उसका प्रेम नहीं हो पाता। बंधु जनेशु वैरम, सरोगता बंधु जनेशु वैरम, अपने संबंधियों से ही वो वैर करता है। नरक से आए हुए दूसरे लक्षण ये बताए जा रहे हैं कि अपने संबंधियों से ही वो नित्य प्रतिदिन लड़ता है। तीसरा बताया गया है कटुका चबाड़ी, वो ऐसा शब्द बोल देता है कि किसी की मना स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यह तीसरा लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है साधुओं के लिए, क्योंकि हम लोग तथाकथित साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी साधु तो है नहीं, अगर हो जाए साधु तो इस प्रकार के वाक्य नहीं निकलेंगे। और यह विचारणीय विषय है कि कहां तक अभी हम लोग पहुंचे, और पता नहीं इस जीवन में ये भाव आएगा कि नहीं, आंकड़ा लगानी चाहिए, क्योंकि बिगड़ी हुई अनंत कोटि योनियों में हम लोग गए और वहां क्या क्या करते हुए इस जीवन में आए। तुलसीदास जी लिखते हैं अबलव लसानी अब न नसई हो, रीनी झीनी प्रेम की दौड़ी डोरी मुझसे तोड़ी छोड़ी न जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं एक छंद में कि जो थोड़ा सा प्रेम था हे राम जी आपके चरणों में, वही प्रेम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि रीनी झीनी मतलब जो थोड़ी सी प्रेम थी आपके चरणों में वो मुझसे कभी छूट न जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इससे जाहिर होता है कि हम लोगों का वास्तव में प्रेम ठाकुर जी से था, लेकिन उसका महत्ता न देकर के ज्यादा महत्व हमने और किसी का दिया, जिससे हमारे जीवन में भटकावा आया। इसलिए स्तुति हमें करनी चाहिए। स्तुति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान की कही हुई वाणी को, गुरु के कही हुई वाणी को अगर दोहराएंगे तो ये जितने लक्षण बताए गए हैं इन आठों लक्षण से, स्वर्ग और नरक के इन चारों लक्षणों से हम ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि ये एक विशुद्ध भक्त के ऊपर ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। चौथा बताया गया है नरक से आए हुए जीव के लक्षण, कि वैष्णवा विद्वसता। वैष्णव विद्वसता का अर्थ है कि साधु से ही वे द्वेष करना सीखता है, हमेशा साधुओं की संगति में रहता है लेकिन कभी प्रेम पूर्वक वाक्य वो नहीं बोलता। भगवान ने, गुरु ने उसको ऐसी कृपा किया कि उसको इसके जीवन में ऐसा संगति मिला, फिर भी उस संगति का वो फल नहीं उठा पा रहा है। विचार करके हम लोगों को इन स्थितियों पर चलना चाहिए भक्ति के पथ पे, और यह तभी संभव है जब शास्त्रों के वाक्यों में अटूट श्रद्धा होगी। हम लोग ज्ञानी खल बन जाते हैं, पढ़ लिए कुछ ज्ञान हो गया, कुछ बोल लिए, कुछ व्याख्या कर लिए, और उसी अहंकार में हम चूर रहते हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अरे उस ज्ञान को व्यवहार में जब तक नहीं लाओगे तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। आप लोग खुद कथाएं सुनते आ रहे हैं, प्रसंग, इसमें व्यवहारिक ज्ञान के आशा पर ही भगवान के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य कश्यप जी बता रहे हैं कि जब तुम अपने मन में, शरीर में और वाणी में इस प्रकार की संयम करते 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 इस व्रत का पालन करोगी तो मुझे आशा है कि तुम्हारी मना स्थिति बदल जाएगी। और देखा जाता है चैतन्य चरितामृत में भी, चैतन्य लीला में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि संसारिक जीव तो भगवान की पूजा करके भी भगवान से विषय मांगता है, लेकिन भगवान विद्वान है, वो विचार करके देते हैं कि चलो अगर मांगने भी आया तो मेरे पास आया तो विचार करके देते हैं कि जिससे इसकी कोई हानि ना हो, उसकी भाव का पोषण भी हो जाए और ये कैसे सुधरेगा उस प्रकार की स्थिति वो देते हैं। इसलिए सिद्धांत के दृष्टि से या तथ्य के दृष्टि से यह कहा जाता है कि अगर मांगना भी है तो हम भगवान से मांगें, वो भगवान विचार करके देंगे तो हम बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन यही कारण है कि हम लोग भटक जाते हैं कि देवता से मांगते हैं तो देवता ऐसे संसारिक चीज देते हैं जिससे हमारा फसावट बढ़ते जाता है। इसलिए मांगे भी तो भगवान से मांगे। भागवत के अंदर चौथे स्कंद के 14वें अध्याय में भी सती देवी दक्ष से कहती हुई एक श्लोक में बोली है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूजक व्यक्ति की अगर निंदा करता है तो अगर आपके अंदर, अब ये सोच रहे हैं कि हमारे पूजनीय गुरुदेव की निंदा कर रहा है या हमारे पूजनीय आराध्य देव का निंदा कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको उस चीज, वो निंदा सुनने की जरूरत नहीं है, वो पहला उपाय बताती हैं कि अगर आपके अंदर शक्ति है, दंड देने की शक्ति है, तो उसे दंड दो, अन्यथा अगर दंड नहीं दे सकते हो तो उस बात को सुनने से बचो, कि उस कान बंद करके वहां से हट जाओ। और तीसरा उपाय बताती हैं कि अगर तुम इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो तुम त्याज शरीर, मतलब अपने शरीर का आत्मसमर्पण कर दो। वहीं उस व्यक्ति को निंदा करने से बचाने के लिए अगर उसके हाथ से मर जाओ या मार डालो, या नहीं तो अपना ये शरीर अब मत रखो कि हम अगर रहेंगे तो और साधुओं की निंदा सुनने को मिलेगा, गुरु की निंदा सुनने को मिलेगा। प्रभुपाद जी एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर जीना भी है तो भगवान से इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे स्वस्थ रखो तो हम आपके भक्ति कर सकें, न कि हम स्वस्थ रख भगवान से रहने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वस्थ रखिए और हम भक्ति से अलग होकर के इस विषय वासनाओं को भोगने में लिप्त हो रहे। इसलिए स्वस्थ रहने की आकांक्षा करनी चाहिए तो हे भगवान मुझे भक्ति अगर चलती है तब तो लंबी आयु दो, हम आपकी ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाए, अन्यथा भक्ति में हमारा मन नहीं लग रहा है तो अगर भगवान उठा ले तो अच्छा है, कि अगर हम जब तक जिएंगे तो पाप ही करेंगे, उससे अच्छा है कि हम इस शरीर को छोड़ दें। जीने की आकांक्षा है तो केवल भगवत भक्ति की पालन करने के लिए। अब दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण एक सती स्त्री के चरित्र का वर्णन करते हुए बताते हैं, लेकिन यह समझ लीजिएगा कि वहां नाम भगवान गोपियों से कह रहे हैं, लेकिन यह सिद्धांत बोला गया है इन श्लोकों के अंदर, व्यवहार नहीं है। सिद्धांत ज्ञान की बात भगवान बताते हैं, गोपियों से कहते हैं कि एक सती स्त्री होती है तो उसको किसी भी परिस्थिति में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब सती शब्द से अर्थ यह है कि पति अनुगामिनी, शास्त्र अनुगामिनी और गुरु अनुगामिनी, गुरु की वाक्यों के अनुगामिनी। तो श्लोक में बोलते हैं कि दुर्भगो दुःशीला, दुर्भगो दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो आरोग्य धर्म धर्म इंद्रियता पति स्त्रीभिर् हातव्यो लोके सुसुर पातकी। अगर एक सती स्त्री अपने पति के अंदर दुर्गुण की विचार करती है कि पति हमारा इस प्रकार का है और दोष आरोपित करके अगर उसको त्याग देती है तो उसको नरक की गति की प्राप्ति होती है, स्वभीर पातकी, वो नरक गामिनी होती है। अब कैसे पति का भी नहीं त्याग करना चाहिए, तो भगवान ये वाक्य गोपियों से कह रहे हैं केवल परीक्षण है तो, कि तुम लोग इस अर्धरात्रि को मेरे बांसुरी का आवाज सुन करके मेरे पास भागे भागे आई हो, तुम लोग सती हो, लेकिन सुन लो कि किस परिस्थिति में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। वाक्य बताते हैं भगवान, ये भगवान की वाणी है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान की बातें कि दुःशील, अगर आचार्यहीन हो, अगर पति हो तो भी स्त्री को उसमें भगवत मतलब परायण बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि भागवत के अंदर कहा गया है कि स्त्रियों के लिए पति ही भगवान है, क्योंकि ये शब्द दो दो जगह आया है इस प्रकार की बात, चौथे स्कंद में भी आया हुआ है इस प्रकार के श्लोक और दसवें स्कंद में भी भगवान यह बात समझा रहे हैं। दूसीलो कि जिसका आचार व्यवहार या स्थिति सही नहीं है, अर्थात वह दुष्चरित्र है, तो भी पत्नी को उसके अंदर अच्छी भाव होनी चाहिए, क्योंकि अपने उस शब्द को ना भूले कि सती शब्द आया है पहले, वो अपने धर्म से च्युत न हो, वो अपने सतीत्व के बल से पति के हाव भाव को या उसकी बिगड़ी स्थिति को सुधार सकती है। दुःशीलो, दुःशीलो के बाद आया है दुर्भगो। दुर्भगो का अर्थ है कि जो अभागा हो। अभागा का अर्थ यह है कि कुछ भी कार्य कर रहा है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की उसको बरकत नहीं है, मतलब फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, वो जो काम को छूता है वो काम ठीक उल्टा हो जाता है, नहीं हो पाता पूरा, तो अभागा समझ करके भी उस पति को, उस अभागे पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिद्धांत तो दोनों तरफ लेकर के चलेंगे हम लोग। एक केवल स्त्री के लिए कहा गया है, लेकिन सिद्धांततः यह भगवान अपने तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग जितना हमें क्या क्या कहती हो, लेकिन मेरे ही बांसुरी की आवाज को सुन करके मेरे पास आई हो, तो मैं यह बता रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में पति त्याजनीय नहीं है। सिद्धांत यह है कि दोनों पक्ष को लेकर के चलना है। यह सिद्धांत स्त्री पर भी लागू होता है और यह सिद्धांत पुरुष के ऊपर भी लागू होता है। भागवत में एकाकी भक्ति की उपदेश दे गई है, केवल कृष्ण भक्ति की, मिश्रित भक्ति नहीं है। इसलिए जब तक हम दोनों सिद्धांत को एक तरफ नहीं करेंगे, तब तक हमारी निष्ठा एक एक प्राणी नहीं हो पाएगी, एक प्राण नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से गुरु महाराज ने इन श्लोकों की व्याख्या किए हैं, वो चीज तो हम लोग छू भी नहीं पाते, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो दुःशील हो, अभागा हो, वृद्ध हो, आरोग्य मतलब रोगी हो, और धनहीनता गरीब हो, उस परिस्थिति में भी स्त्रीभिर् न हातव्यो, उस परिस्थिति में भी स्त्री को कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह भागवत है और यह श्लोक में इसलिए कहने का प्रयास किया इसके ऊपर कि यह प्रसंग एक पति अपने पत्नी को कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह उपदेश दे रहे हैं, इसलिए यह कहा गया। इस प्रकार की अगर हम स्थिति अपने जीवन में लागू करेंगे, दोष बुद्धि से हट करके केवल गुण बुद्धि पर हम आएंगे, तो कभी भी हम अपने भक्ति पथ से अलग नहीं जा पाएंगे। लेकिन बात बात में दोष ही नजर आता है, इसीलिए भक्ति पनप नहीं पाती, वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए इस प्रसंग से यह हमें शिक्षा लेनी है कि व्रत करें, नियम करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके पीछे जैसे कश्यप जी का उपदेश था वैष्णव बनना, भगवान का भक्त बनना, तो वही स्थिति है कि हम अपने जीवन में मन से, वाणी से, शरीर से ऐसे कार्य करने का प्रयास करें कि हम भक्ति पथ से अलग न हों। गीता के 17वें अध्याय में भी मन का संयम, वाणी का संयम और इंद्रियों का संयम के विषय में 3 श्लोक बोले गए हैं, 17, 14, 15 और 16। 3 श्लोकों के अंदर मन की संयमता, शरीर की तपस्या का परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इसमें भी आया कि ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही यह शारीरिक तपस्या है। श्लोक नंबर 15 के अंदर इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ईश्वर या देवों योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिताओं जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखें। श्लोक नंबर 15 में बताते हैं वाणी की संयम कि अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वध्यायाभ्यासनं चैव वांगम मयम तप उच्यते कि सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना चाहिए और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या यह है कि हम ऐसे शब्द न बोलें कि किसी की बनी हुई स्थिति, जो भक्तिमय स्थितियां हैं, वो बिगड़ जाए। और उससे बढ़कर के परिभाषा यह बता रहे हैं कि साहित्य का नियमित पारायण करना, मतलब साहित्य मतलब अर्थ है कि ग्रंथ का नित्य प्रतिदिन पाठ करना, यह वाणी की परिभाषा है। तब हमारी वाणी शुद्ध हो सकती है। अब मन की संयमता बता गए हैं श्लोक नंबर 16 में कि मन प्रसाद सौम्यत्यम मौनम आत्मन विग्रह, मौनम आत्म विग्रह भाव संशुद्धि रीते तो तपो मान समुच्यते। मन की तपस्या यह है कि संतोष, संतुष्टि हो, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या, ये तीनों बताया गया है। तीनों की वास्तविक तपस्या यह है कि मन, वाणी और शरीर, ये तीनों मिलकर के संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को खुश करने का काम करना चाहिए, तब हम अपने सही स्थिति में रह पाएंगे। हरे कृष्ण। आचार्य महोदय, कुछ प्रश्न है, बोलिए प्रभु। यह कोई कोई कहता है नीति श्लोक का श्लोक है, या और कोई कहते हैं कि चाणक्य नीति का श्लोक है, लेकिन चाणक्य नीति में नहीं है, लेकिन ये लक्षण शास्त्र के वाक्य हैं, वैदिक साहित्य के वाक्य हैं जिसमें बताया गया है। गरुड़ पुराण में हो चाहे कहीं, मैं मतलब इसका नहीं है, लेकिन मैं महाराज के भी कथा में इस बात को सुना हूं, उन्होंने तो प्रमाण भी बताया है, मैं भूल रहा हूं। ये श्लोक गौर कृष्ण प्रभु भी बताए हैं, क्योंकि यह हम लोगों के पूर्ववत जीवन के मतलब स्थिति को बताया गया कि हमने क्या क्या किया है, उसका फल हमें मिल रहा है। क्योंकि गीता भागवत भी पढ़ते हैं तो कहते हैं भैया हमने जो किया है वो पाया, जो मैं कर रहा हूं वो बाद में पाऊंगा। इस आधार पर यह वाक्य कहा गया। प्रमाण खोजने की जरूरत, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण या देखने की प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्र प्रमाण है। यह नहीं है कि कोई अपने पिता को दिखा सकता है, एक कोई ऐसे प्रमाण होते हैं, श्रुति प्रमाण होते हैं, जो कहने से भी, वाणी प्रमाण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग सुने हैं कि भागवत ऐसा ग्रंथ है और वेदव्यास ने ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, तो सुनने के आधार पर ही हम देखते हैं कि कितने ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त कर गए। तो श्रुति प्रमाण को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, और ये सब सिद्धांत हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होते, ये अपने आप हम अपने आंकड़ा लगा सकते। पुण्य समान हो जाते हैं। एक पुण्य समान व्रत है और वो कौन सा व्रत है मेरे को पता नहीं है कि वो अदिति कौन से व्रत के थे। मेरे को ध्यान नहीं है। पुंसवन व्रत है, पुंसवन व्रत कहते हैं, पुंसवन व्रत कहते हैं। इसके अंदर इतनी विधि, उन्होंने इतना नियम तो बताया, उनका भाव तो यह था ना कि कहीं ना कहीं त्रुटि होती तो इंद्रहा शब्द बदल जाएगा, मतलब वो मित्र बन जाएगा। उस स्थिति में उन्होंने कहा कि उनके मना स्थिति को बदलना था कि ऐसे इस प्रकार के अगर इतनी नियम पालन करेगी तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो होएगा ही, और त्रुटि होएगा तो इंद्र का मित्र बन जाएगा है। पुंसा पुंसवन पुरुषों को या स्त्रियों को, पुरुष पुरुषों से ये नहीं है कि पुंसवन मतलब नियम होता है पालन करने लायक, मतलब नियम। पुंसवन शब्द का अर्थ है पालन करने वाले तरीके, पालन करने के नियम। हरे कृष्ण। दिशा बदलिए उसका। अगर संसारिक चीज की वार्ता मतलब चर्चा करने के लिए मन में भाव आ रहा है तो उसको दूसरे ढंग से शास्त्र के वाक्य बोलने का प्रयास कीजिए, उसको बदल दो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इच्छा शून्य जीव जी ही नहीं सकता है, इच्छा विहीनता कभी किसी जीव के अंदर होएगी नहीं कि हम इच्छा से बिल्कुल शून्य हैं। उस स्थिति में वह जीव जी नहीं पाएगा, इच्छाएं उसके अंदर स्वाभाविक हैं। तो उन इच्छाओं की दिशा को बदलना, मतलब दिशा बदलने का अर्थ यह है कि संसारिक चीज न बोल करके हम उसको बोलने के, अगर बोलना है तो भगवान के विषय में बोले। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं शास्त्र के वक्त तो हम भगवान का नाम लें। ये बताया गया है मनुष्य संहिता का वाक्य है कि अगर मनुष्य के अंदर कभी भी बुरी भावना आती है, अगर गलत कार्य करने की प्रवृत्ति मन में बार बार मतलब उद्वेग उत्पन्न करता है तो उस समय जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए भगवान का नाम, कि आप ही बचा सकते हो, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हम लोग उदाहरण से देखते हैं कि जब हरदास ठाकुर को विचलित करने के लिए जो आई थी वेश्या, उसको देख करके हरदास ठाकुर जी भयभीत होकर के कि भगवान का नाम ही मुझे बचा पाएगा, जोर जोर से उन्होंने उच्चारण किया। नाम हो, नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है और कोई नहीं बचा सकता। या शास्त्र का वाक्य हो कि भगवान आपने शास्त्रों में कहा है कि मैं ही बचाऊंगा, अगर श्लोक नहीं आता है तो केवल शब्द तो कह ही सकते हैं कि आप बचा सकते हैं, आप बचाओ, मैं समर्थ हूं। हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, गौर हरि प्रभानंदे हरि हरि ओम।